भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 28। अन्नम चोरुसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोविप्रार्थसवः शूराः प्रणेमूर्भिवि मूर्धभि। अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम् गोवी प्रार्था सव शूरा प्रणेमु भुविर्मूर्धभि। अन्न और उरु रसम अत्यंत स्वादिष्ट तेभ्य ब्राह्मणों को दत्वा देकर भगवद अर्पणम भगवान को जो पहले अर्पित किया गया गो गाय विप्र ब्राह्मण अर्थ उद्देश्य आसव जीवन का उद्देश्य शूरा समस्त
तत्पश्चात यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को अत्यंत स्वादिष्ट
वह अत्यंत सुसंस्कृत और यथार्थ मानव पूर्णता के अनुरूप मानव जीवन की पूर्णता की उपलब्धि सभ्यता के तीन सिद्धांतों का पालन करने से होती है। गोरक्षा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा और सर्वोपरि भगवान के शुद्ध भक्त बनने की साधना। श्री भगवान का भक्त हुए बिना मानव जीवन को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। मानव जीवन की पूर्णता की प्राप्ति ब्राह्मण एवं वैष्णव कोई ऐसा भोजन स्वीकार नहीं कर सकते जो श्री भगवान को पूर्व निवेदित नहीं किया जा चुका है। भगवान को निवेदित भोजन भक्तों के द्वारा भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण किया जाता है। अंततः भगवान ही मानव और अन्य जीवधारियों को समस्त प्रकार का भोजन प्रदान करते हैं। मानव को इस तथ्य का बोध अवश्य होना चाहिए कि संपूर्ण खाद्य पदार्थ अर्थात अन्न, शाक, दुग्ध, जल इत्यादि जो मानव जीवन की प्रधान आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन खाद्य पदार्थों की रचना किसी वैज्ञानिक या भौतिकतावादी द्वारा मानवीय प्रयत्न से किसी प्रयोगशाला की जा सकती। मनुष्यों का बुद्धिवादी वर्ग कहा जाता है तथा जिन्होंने सर्वोच्च साकार पक्ष के रूप में परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है वे वैष्णव कहे जाते हैं, किंतु ये दोनों ही यज्ञ में अवशेष खाद्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं। यज्ञ का विधान अंततः यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ अवशिष्ट खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, एवं जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करता है वह सब प्रकार के पापों को ही ग्रहण करता है, जिसका परिणाम होता है दुख। प्रवास क्षेत्र में यदुवंशियों के द्वारा निर्माण करवाई गई खाद्य सामग्री योग्य ब्राह्मणों को अर्पित किए जाने के पूर्व भगवान श्री विष्णु को निवेदित हो चुकी थी। उन लोगों ने अपने मस्तक धरती पर टेक कर निष्कपट भाव से प्रणाम किया था। वैदिक संस्कृति में यदुवंशियों क्यों हां किसी भी प्रबुद्ध परिवार को विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में सेवा के क्षेत्र में समग्र सहयोग के द्वारा मानवीय पूर्णता प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द में भी यह सार्थक है। अन्न, शाक और दुग्ध के मिश्रण से सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं। ये सब व्यंजन सात्विक गुण में हैं, अतएव भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। जैसा भगवद गीता में वर्णित है, भगवान केवल वे ही खाद्य पदार्थ स्वीकार करते हैं जो फल, पुष्प, पत्र और तोयम की सीमा में आते हैं, यदि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। श्री भगवान के प्रति यथार्थ समर्पण का मानदंड केवल भक्ति है। भगवान ने यह आश्वासन दिया है कि वे भक्तों के द्वारा समर्पित भोजन अवश्य ग्रहण करते हैं। अतः विभिन्न दृष्टियों से विचार करने पर ज्ञात होता है यदुवंशी पूर्णतया प्रशिक्षित सभ्य व्यक्ति थे, और ब्राह्मण ऋषियों द्वारा शापित होना केवल भगवान श्री कृष्ण की इच्छा का परिणाम था। ये संपूर्ण घटनाएं समस्त संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी थी कि ब्राह्मण अथवा ऋषियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय शीर्षक वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं, इस पर श्री भक्ति वेदांत भाष्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ब्राह्मणों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन अर्पित किया जो पूर्व ही श्री भगवान को निवेदित किया गया था, और इस प्रकार उन्होंने अपने शिरों से धरती का स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम किया। गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए उन्होंने परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है जिसका शीर्षक है श्री भगवान के बाहर, श्री वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। और यहाँ पर वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं, भगवान ने जो लीलाएं की वृंदावन में और वृंदावन के बाहर दोनों। और सुखदेव गोस्वामी और अन्य आचार्य इस वृत्तांत को विभाजित कर कर बता रहे हैं। क्या आवश्यकता है भगवान की लीलाओं को इस प्रकार से विभाजित कर कर बताने की, क्योंकि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान वो हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं देखा जाता। तो फिर ये विभाजन क्यों, भगवान के वृंदावन की लीला और भगवान के वृंदावन के बाहर की लीला? ये बात सत्य है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और भगवान समान रूप से अपने नाम गुण रूप और लीला में प्रस्तुत रहते हैं। परंतु जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान का विशेष प्रयोजन ये है हम बद्ध जीवों को प्रोत्साहित कर कर अपने धाम ले जाना। और इसलिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग अपने निकटतम पार्षदों के साथ करते हैं। जैसे कि भगवान जब वृंदावन में लीला कर रहे थे तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर श्रीमद् भागवत की अपनी टीका में वो कहते हैं कि भगवान की भौम वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो एक दृष्टिकोण से गोलोक वृंदावन की लीलाओं से ज्यादा रुचिकर है। कैसे, वो उदाहरण से समझाते हैं कि भौम वृंदावन में या इस भौतिक संसार में जब भगवान लीला करते हैं तो वो इसके समान है जैसे मानो कोई बहुत चमकदार हीरा वो किसी काले बैकड्रॉप के सामने रखा हो, या कोई ऐसी थाली में उस हीरे को रखा है जो कि लोहे की बनी हो। और भगवान कि गोलोक वृंदावन की जो लीला है वो किसके समान है, जैसे कि कोई चमकदार हीरा है जो कि सोने की थाली में रखा गया है। तो हीरे की चमक कौन सी थाली में ज्यादा उठकर दिखेगी, लोहे की या कांस की जो थाली होगी या ब्लैक बैकड्रॉप, उसमें वो हीरे की चमक ज्यादा उठकर दिखती है। सोने की थाली में वो कहां गुम हो जाएगा हीरा, वो दिखाई भी नहीं देगा। तो भगवान गोलोक वृंदावन में जो लीला करते हैं तो बैकड्रॉप क्या है, सोना, सोने की थाली। और ये भौतिक संसार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द आयन एज, कलयुग है ना, तो इस लोह रूपी संसार में जब भगवान आके लीला करते हैं तो भगवान की लीलाएं बहुत उभर कर और उठ कर दिखाई देती हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान इस धरती पर आकर जब लीला करते हैं तो बहुत विशेष लीला करते हैं और अपने विशेष गुणों को दर्शाते हुए, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो वहां तो पहले से ही सब आकर्षित हैं भगवान से, तो वहां भगवान को इतने प्रयत्न नहीं करने पड़ते उनको और आकर्षित करने के लिए। वो तो स्वाभाविक रूप से सभी भगवान से आकर्षित हैं, परंतु इस भौतिक संसार में भगवान को अथक प्रयास करने पड़ते हैं। इतने प्रयास करने के बावजूद भी हमारे अंदर भगवान के प्रति वो आकर्षण जागृत नहीं हो पाता। हालांकि वो हैं सर्व आकर्षक, परंतु वो सर्व आकर्षक कृष्ण अपने फुल फॉर्म में रहते हैं इस भौतिक संसार। तो भगवान इसलिए जब अपनी लीलाएं करते हैं तो बहुत सोच विचार कर लीलाएं करते हैं कि कौन कौन सी लीलाएं मैं यहां पर करूं जिनके द्वारा ये बद्ध जीव तनिक मात्र मेरे प्रति आकर्षित हो जाए। जैसे गोलोक वृंदावन में असुर वध लीलाएं नहीं है, क्योंकि वहां पर असुर वध लीला से गोलोक वृंदावन के निवासी इतने प्रभावित नहीं होते जितने हम लोग यहां पर होते। हमें असुर वध की लीला बहुत रोमांचक लगती है, भगवान ने कैसे चीरफाड़ किया, खून खराबा, ये सारी जो लीलाएं हैं इसमें हम ज्यादा रुचि लेते हैं। और भगवान रास लीला कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, नींद आ जाती है उसमें। हमें कुछ इतना ज्यादा आकर्षण नहीं लगता, परंतु भगवान ने महाभारत में किस प्रकार से पहिया उठाया, रथ का पहिया, रथ का चक्का उठाया और भीष्म पितामह के पास भाग रहे हैं मारने के लिए, पूतना का वध कैसे किया, ये सारी जो लीलाएं तुरंत आंख हमारी खुल जाती है। तो अब इन सब लीलाओं में, जैसे यहां पर इस स्कंद में वर्णित है भगवान की वृंदावन की लीला और वृंदावन के बाहर की लीला, तो हम इस विभाजन को देखें भगवान की लीलाओं के। तो भगवान ने जो वृंदावन में लीलाएं की वो बहुत मनोहर लीलाएं की, मन को हरने वाली लीलाएं की। असुर वध में भी भगवान छोटे से बने रहे, भगवान ने अपना ऐश्वर्य अपने रूप में नहीं दिखाया, अपने कार्यों में दिखाया। जैसे कि हम अक्सर सुने हैं कि भगवान ने जिन जिन असुरों का वध वृंदावन में किया, असुर बहुत बड़े रूप में आए परंतु भगवान उतने से ही रहे। तो भगवान अपना ऐश्वर्य अपने रूप में नहीं दिखाए, अपना रूप वैसे ही मनोहर रूप रखा भगवान ने। तो उन असुरवध लीलाओं में भी वृंदावन में भगवान ने अपना माधुर्य बनाए रखा, क्योंकि वो माधुर्य धाम है। ऐश्वर्य दिखाते हुए भगवान ने अपना माधुर्य बनाए रखा, उसे बरकरार रखा। तो इसलिए वृंदावन की जो लीलाएं हैं, असुर वध की भी लीलाएं यदि लें तो वो भी मनोहर लीलाएं हैं। और वृंदावन के बाहर की जो लीला, उसमें भगवान ने दीक्षा का प्रदर्शन किया कि कैसे हम भगवान के वृंदावन की बाहर की लीलाओं से ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करें। और ये बहुत आवश्यक है समझना कि भगवान के वृंदावन की लीला को समझने के लिए यदि हम ज्ञान और बुद्धि को लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। विद अवर लॉजिक एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा वृंदावन पास टाइम्स। तो इसलिए जो भी बड़े बड़े दिग्गज जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी, उनको भी जब वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करना था तो उन्हें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, तर्क वितर्क को वृंदावन के बाहर पार्क करके अंदर आना था। इसलिए ब्रह्मा जी तो विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी बने किससे हैं? बुद्धि से। ही जस्ट मेड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से वो इस निष्कर्ष पर आए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य भगवान, ये ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सका उन्हें। हालांकि भगवान ऐसी मनोहर लीला कर रहे थे अपने ग्वाल सखाओं के साथ, जो केवल वही भक्त भगवान के समझ पा रहे थे जो अपनी बुद्धि और ज्ञान को नहीं लगा रहे थे। क्योंकि भगवान सोच के आए थे कि यदि किसी को मेरी लीलाओं को ज्ञान और शिक्षा और इन है तो मेरे वृंदावन के बाहर की लीला समझो। इसलिए जैसे कि यहां पर यह विभाजन किया गया है इस स्कंद में, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि भगवान की ये दोनों लीलाओं को मिक्स मत करना। आपको यदि इस बात का ज्ञान है कि रूप गोस्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, इनमें से दो प्रमुख ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखे, विदग्ध माधव और ललित माधव। हालांकि इनका विभाजन पहले नहीं किया था उन्होंने, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि केवल कृष्ण लीला, तो कृष्ण लीला का विभाजन कर कर फिर ये दो नाम या दो ग्रंथ बने। तो विदग्ध माधव ये रूप गोस्वामी ने इसे रचा। ये भगवान की कौन सी लीला? विदग्ध माधव में वृंदावन की लीला। तो विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी ने वृंदावन की लीला का वर्णन किया है, और ललित माधव में वृंदावन के बाहर की लीला। तो परंपरा में, श्रीमद् भागवत की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को यह आदेश दिए कि दोनों को मिलाओ मत, इन लीलाओं में अलग अलग रस है, रसाभास हो जाएगा। तो हम साधकों को ये विभाजन इस प्रकार से समझना है कि हमें भगवत धाम पहुंचने के लिए ज्ञान, वैराग्य इन सब की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ भगवान से शुद्ध आकर्षण जागृत हो, इसकी भी आवश्यकता है। तो हमारा मन भगवान के मनोहर लीला से हर जाए, ये भी आवश्यक है। और वो मनोहर लीलाओं को समझने के लिए हमें भगवान के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, जो भगवान ने वृंदावन के बाहर लीला की। ये जैसे ट्रेन दो पटरी पे चलती है ना, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चल सकती। तो इसलिए हमारे भक्ति की ये जो गाड़ी है, इसके लिए भी ये दो पटरियां आवश्यक हैं, भगवान के वृंदावन की लीला और वृंदावन के बाहर की लीला। मनोहर लीलाएं और ज्ञान और शिक्षा से पूर्ण भगवान की लीलाएं, दोनों आवश्यक है। राधानाथ महाराज बहुत वर्षों पहले वो अपने कमरे में चैतन्य चरितामृत की क्लासेस लिया करते थे ब्रह्मचारियों के लिए। तो ऐसे एक क्लास में उन्होंने अपना एक साक्षात्कार बताया कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत, ये अलग अलग ग्रंथ हमारे लिए आचार्यों ने क्यों ला कर दिए, या भगवान ने आचार्यों के द्वारा ये अलग अलग ग्रंथ हमारे सामने क्यों प्रस्तुत किए। जैसे कि इस्कॉन में या हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये तीन प्रमुख हमारे ग्रंथ हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे, भगवद गीता वो ग्रंथ है जिसमें भगवान ने उपदेश दिए हैं। भगवद गीता इज व्हाट कृष्णा स्पोक, श्रीमद् भागवत इज व्हाट कृष्णा डिड, जो उनके कार्यकलाप, एंड चैतन्य चरितामृत इज व्हाट कृष्णा थिंक्स, वेरी डीप। कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो चैतन्य चरितामृत की रचना के द्वारा भगवान कृष्ण मन में क्या सोचते हैं उसकी रचना की। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है, वो समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है उसके द्वारा भी उस व्यक्ति को आप समझ सकते हैं, परंतु वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, अभी मन में किसके मन में क्या चल रहा है, किसे पता। अलग अलग यहां पर हम सब बैठे हुए हैं, मेरे मन में कुछ और चल रहा होगा, आप लोगों के मन में कुछ और चल रहा होगा, जो सब्जी काट रहे हैं उनके मन में कुछ और चल रहा है कि कितनी सब्जी आज आ गई, जल्दी कुट नहीं कर रही। तो किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत प्रगत होना है। तो ये ग्रेडेशन बताए। तो राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि हमें हमारी भक्ति में भी भगवान का साक्षात्कार उस प्रकार से करना है कि भगवान के जो उपदेश हैं उन्हें समझते हुए भगवान की लीलाओं को समझो। भगवद गीता पूर्ण प्रकार से डाइजेस्ट करने के बाद भगवान की जो भागवत की लीलाएं हैं उनको समझना है, और फिर उनको समझने के पश्चात भगवान का उद्देश्य क्या है, उनके मन में हमारे प्रति क्या भावनाएं हैं। कृष्ण भावना का एक और अर्थ क्या है, कृष्ण के मन में हमारे प्रति भावना, वो है चैतन्य चरितामृत। इसलिए हम कल्पना में नहीं कर सकते कि हमारे आचार्यों ने कितना कितनी पक्की तैयारी की है हमारे लिए। हम तो पुस्तक वितरित करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कई बार ये भी नहीं जानते कि इनके अंदर हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या कूट कूट के भरा है हमारे उद्धार के लिए। जैसे हम चैतन्य चरितामृत की बात कर रहे हैं, अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत अनुवादित कर प्रकाशित करवाया, 2 महीनों में 17 वॉल्यूम 2 महीनों में प्रकाशित करवाया, मैराथन बुक पब्लिशिंग चल रहा था, स्पर्धा चल रही थी पब्लिशर्स में और श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में, और श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन उनके पब्लिशिंग से ज्यादा फास्ट था। तो अब कल्पना कीजिए, चैतन्य चरितामृत सेट्स बांट रहे थे वो लोग रास्ते में, किनको, ये अमरीकी यूरोपीय लोगों को। अच्छा, यहां पर उपस्थित कितने भक्त हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ रखा है पूरा, केवल वो ऊपर शीर्षक नहीं पूरा पूरे 17 वॉल्यूम, इक्का दुक्का कोई हाथ ऊपर हुए थे। तो सुना है चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ। तो एक माताजी शिष्या श्रील प्रभुपाद की, उन्होंने एक कोई महाप्रसाद का स्टॉल शुरू किया था ऐसे बाहर किसी मॉल में, जो सुपरमार्केट होते हैं अमेरिका में वहां पर, और ये बंगाली स्वीट, संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब। तो वो आके प्रभुपाद को रिपोर्ट दे रही थी कि लोग कितना, ये जो आपने हमें बंगाली मिठाई सिखाई है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितनी बिक्री हो रही है, कितना मुनाफा हो रहा है। तो वो रिपोर्ट दे रही थी, और उसी समय त्रिपुरारी महाराज वो आए श्रील प्रभुपाद को रिपोर्ट देने के लिए उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो माताजी भी वहीं पे थी, और त्रिपुरारी महाराज प्रभुपाद के कमरे में आए और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इतनी भगवत गीता बिकी हैं, इतने श्रीमद् भागवत, और सबसे ज्यादा श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के सेट्स गए हैं। तो प्रभुपाद ने अब इन माताजी की तरफ देखा और कहा, चैतन्य चरितामृत इज द रियल बंगाली स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट। तो हम देखते हैं कि भगवान की ये सारी जो लीलाएं हैं, हमारे आचार्य एक एक लीला को ले लेकर कैसे उनके रसों का बखान किए हैं, उनके तत्वों का बखान किए हैं। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण आचार्यों की टीकाओं को समझते हुए करना चाहिए, तब जाकर हम सही मायने में भगवान की इन लीलाओं के प्रति आकर्षित होंगे। नहीं तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में विशेष रूप से भगवान की जो वृंदावन की लीला है, इसे इतना सस्ता बना दिया गया है कि आए दिन यहां वहां जो भागवत सप्ताहें चलती रहती हैं, जिसमें भगवान के वृंदावन की लीलाओं को बताया जाता है, लेकिन मनोरंजन के रूप में, उसके पीछे जो तथ्य है, जो सिद्धांत है, वो नहीं बताया जाता। अब जैसे यहां पर देखिए, इस प्रसंग में यदि हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रसंग लगेगा कि यदुवंशी जो हैं उन्होंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं। अरे हम जो 16 माला मर घिस के कर रहे हैं, हम भी कभी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा अपराध हम किसी ब्राह्मणों का करें, और यहां यदुवंशी उन्होंने ऐसा अपराध किया जिनके वजह से पूरा कुल उनका विध्वंस हुआ, शापित वो हुए। यहां पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, यदुवंशी वैसे नहीं थे। यहां पर इस तात्पर्य के शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभास तीर्थ में यदु के वंशधरों ने जो व्यवहार प्रदर्शित किया वह अत्यंत सुसंस्कृत और यथार्थ मानवता पूर्ण के अनुरूप था। सुसंस्कृत, यथार्थ और मानवता पूर्ण के अनुरूप। तो अब ऐसे व्यवहार को सुसंस्कृत कैसे बोल सकते हैं? यहां पर हालांकि इन ब्राह्मणों द्वारा यदुवंशी शापित हुए, परंतु इन ब्राह्मणों को यदुवंशी जो सत्कार दे रहे हैं वो दर्शा रहा है कि यदुवंशी कितने सुसंस्कृत थे। तो इससे हम क्या सीखते हैं आज के श्लोक कि हम जब वैष्णव के मध्य में रहते हैं तो हमें कितना सुसंस्कृत रहना चाहिए वैष्णव के साथ। यहां पर क्या हमें कोई शाप दे रहा है कि तुम्हारा कुल नाश हो जाए, तुम जो भी कौन से परिवार से हो, तुम शुक्ला, शर्मा, मालपानी, जो भी परिवार से हो नाश हो जाए तुम्हारा, कोई शाप दे रहा है ऐसे हमें यहां पर, यदुकुल तुम्हारा नाश हो जाए। परंतु इसके बदले में वो जो सदाचार प्रदर्शित कर रहे हैं, और केवल प्रदर्शित नहीं कर रहे, अपने हृदय से ब्राह्मणों का आदर सत्कार वो कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में यदि हम संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी संस्कृति है श्रीमद् भागवत या भागवत धर्म की, जो संस्कृति ऐसी है जिसकी कल्पना हम इस भौतिक संसार में कर ही नहीं सकते। जैसे महाभारत, महाभारत में दुर्योधन जैसा राक्षस, उसके अंदर भी संस्कृति देखिए। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनके सरों को काट कर लेके आता है, तो दुर्योधन अब मूर्छित घायल अवस्था में रणभूमि पर गिरा हुआ है, कुछ दिख भी नहीं पा रहा, बस अधमरी स्थिति में है। दुर्योधन अपने हथेली से इन सरों को दबाता है और दबाते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये पांडवों के सर हो ही नहीं सकते, इतने कोमल जो सर हैं। पांडवों के सर दुर्योधन अच्छे से जानता था, ये तो किसी बालक के सर हैं। और जब अश्वत्थामा कहता है कि हां मुझे पांडव तो नहीं मिले, परंतु ये पांडवों के 5 पुत्र, इनको मार के लाया हूं द्रौपदी की, तो दुर्योधन अश्वत्थामा को भर्त्सना उनकी करते हुए बोलते हैं कि शर्म नहीं आई तुम्हें? दुर्योधन बोल रहा है कि अश्वत्थामा तुम्हें शर्म नहीं आई कि सोते हुए नन्हे से बालकों को तुमने मारा, और वो भी जो हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाले, उनको मारा तुमने। तो देखिए दुर्योधन में भी ये संस्कृति थी। इतना ही नहीं, जब भीष्म पितामह ने वो 5 बाण अलग कर दुर्योधन को दिए कि ये रखो तुम अपने पास, कल इन 5 बाणों को मुझे देना और 5 पांडवों का वध मैं इन 5 बाणों से करने वाला। और फिर कृष्ण और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण तो जान गए थे कि ये भीष्म पितामह ने 5 बाण अलग से निकालकर दुर्योधन को दिए हैं। तो वो उस दिन युद्ध अंत होने के पश्चात संध्या के समय मिलने गए, मेरे ख्याल से कृष्ण या अर्जुन, कौन थे मिलने गए? अर्जुन। और 5 बाण मांग लेते। दुर्योधन ऐसा सत्कार करता है अर्जुन का, क्योंकि अतिथि देवो भव। वही अर्जुन जिसको मारने के लिए उतारू, जैसे ही सूर्योदय होता, सूर्यास्त के पश्चात फिर अतिथि देवो भव। तो अर्जुन से पूछता है दुर्योधन की क्या मैं सेवा करूं अर्जुन तुम्हारी, 5 बाण दे दो। और बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के 5 बाण निकालकर दुर्योधन, ऐसा भी नहीं कि कोसते हुए और रंज करते हुए, शर्म नहीं आई तुम्हें ये मांगते हुए। कई बार जब हमसे कोई कुछ मांग लेता है, प्रभु जी थोड़ा तिलक देना, अरे तो अपना तिलक कहां गया तुम्हारा? हम तिलक के ऊपर वहां पर युद्ध छिड़ देते हैं। कई बार देखा जाता है यात्रा में, अरे तुम यात्रा में लिस्ट दी गई थी ना, तिलक कहां है तुम्हारा? देखिए यहां पे दुर्योधन, दुर्योधन के संस्कार देखिए कि वो 5 बाण जो भीष्म पितामह अलग निकाल के रखे दुर्योधन की सुरक्षा में, दुर्योधन के संरक्षण में, वो दुर्योधन बिना संकोच के अर्जुन को निकाल के दे रहा, हंसते हुए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए, ये लो। और ये नहीं तुम भी क्या याद रखोगे चाहो, ऐसा नहीं। तो ये संस्कृति, इसे यहां पर सुसंस्कृत व्यवहार उनका बताया जा रहा है। समुद्र मंथन के पश्चात जब देवासुर संग्राम होता है, आठवें स्कंद में इसका वर्णन है। तो उसमें ये प्रसंग है कि जब देवता और दानव, देव और असुर, इनमें जब संग्राम छिड़ता है तो कुछ श्लोक हैं जिसमें वर्णन ये है कि जब देवता किसी वाहन पर बैठकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए सामने आते तो राक्षसों की संस्कृति बताई गई है कि यदि कोई देवता हाथी पर सवार होता तो उससे युद्ध करने के लिए वो राक्षस, जो भी दानव, वो हाथी पर ही होना चाहिए, उसका भी वाहन हाथी होना चाहिए। कोई यदि घोड़े पे कोई घुड़सवार आता, कोई यदि देवता घोड़े पे सवार होकर युद्ध के लिए किसी विपक्षी योद्धा के सामने आता तो वो यदि हाथी पे होता तो वो उससे युद्ध नहीं करता, नहीं, तुमसे कौन करेगा जो घोड़े पे सवार है, तो वो साइड में हो जाता और जो घोड़े पे सवार है उसको आगे करता कि ये भी घोड़े पे सवार है, तुम करो इससे युद्ध। उनका एटिकेट देखो, वॉर में एटिकेट देखो इनका, वैष्णव एटिकेट छोड़ो, वॉर के अंदर एटिकेट देखो। आजकल क्या, आजकल के युद्ध क्या है, जो मासूम जनता है उनके ऊपर बम फेंके जाते हैं ऊपर से, जो जनता चल रही है ऊपर से वो अपने फाइटर बॉम्बर से वहां पर से बम फेंकते हैं। ये भागवत की संस्कृति देखो कि राक्षस भी वो युद्ध नहीं करते थे, वो तुम्हारा वाहन मेरे वाहन से मैच नहीं कर रहा तो हम लोग युद्ध नहीं कर सकते। बहुत कुछ इससे हम सीख सकते हैं हमारे वैष्णव सदाचार के विषय में। जैसे कलयुग में ही महाराणा प्रताप सिंह, सुना है महाराणा प्रताप सिंह के विषय में बताया गया है कि महाराणा प्रताप सिंह 7 फुट और उनकी तलवार, एक तलवार का वजन 90 किलो। सोचिए तो उनका वजन कितना होगा, और वो ऐसे योद्धा महाराणा प्रताप सिंह कि वो जब कोई अगर किसी के साथ युद्ध चल रहा है, वो भी घोड़े पे, तो अपनी तलवार से एक वार से वो घोड़े को और योद्धा को दो भाग में विभाजित कर देते, एक एक प्रहार में। परंतु महाराणा प्रताप सिंह, इनका स्टैंडर्ड क्या था, ये ऐसी 90 किलो की तलवार दो दो रखते थे अपने साथ। दो दो तलवार इसलिए रखते थे कि यदि विपक्षी योद्धा वो निहत्ता हो गया, यदि उसके किसी अस्त्र शस्त्र यहां वहां गिर गए, नहीं है उसके पास, तो वो दूसरी तलवार निकाल के देते, ये लो, निहत्ते को नहीं मारूंगा मैं। तो ये वास्तविक रूप में जो क्षत्रिय, जो जो संस्कृति का पालन करता है, जो स्टैंडर्ड पालन करता है, विकट परिस्थिति में भी वो अपने स्टैंडर्ड को छोड़ता नहीं, ये हम इसमें समझते हैं। जैसे तीसरे स्कंद में हिरण्याक्ष और वराहदेव, इनका युद्ध बताया गया है। तो हिरण्याक्ष वो त्रिशूल फेंकता है वराहदेव के ऊपर, और वराहदेव अपने सुदर्शन से उस त्रिशूल का विध्वंस करते हैं। अब इस प्रसंग के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वराहदेव ने हिरण्याक्ष के त्रिशूल को उस प्रकार से विध्वंसित किया जैसे एक बार इंद्र ने गरुड़ जी के जो पंख थे उनको काटा था अपने वज्र से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक कहानी संक्षिप्त रूप में देते हैं तीसरे स्कंद में, कि एक बार गरुड़ जी विष्णु के वाहन वो देवताओं का अमृत चुरा लेते हैं, और वो इसलिए चुराते हैं कि उनकी माता बहुत असहाय दयनीय स्थिति में रहती है, विनता उनका नाम। तो अपनी माता विनता के लिए, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ कद्रु बहुत वो इनको परेशान कर रही थी, तो अपनी असली माता विनता के लिए ये अमृत चुरा लेते हैं। तो इंद्र, इनको जब समझ में आता है कि गरुड़ जी ने अमृत चुरा लिया, तो यहां पर इंद्र वो अपना वज्र लेकर आते हैं गरुड़ जी को मारने के लिए। अब शक्ति में देखा जाए गरुड़ जी के सामने कुछ नहीं, परंतु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गरुड़ जी ने जब देखा कि इंद्र अपना वज्र लेकर आए हैं और ये वज्र उनको भगवान ने साक्षात दिया है, मेरे आराध्य देव ने यह वज्र इंद्र को दिया है, तो ये वज्र जब मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो इस वज्र का मान रखने के लिए मुझे अपना पंख कटवाना होगा। तो हालांकि गरुड़ जी के पास शक्ति थी प्रतिकार करने की इंद्र और उस वज्र के विरुद्ध, परंतु भगवान के द्वारा दिया गया ये का मान रखते हुए गरुड़ जी ने स्वीकार किया कि मेरे पंख इसके द्वारा कटे जाएं। और प्रभुपाद फिर लिखते हैं, दिस इज द कल्चर ऑफ भागवत। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं कि यदि ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं श्रीमद् भागवत में हमारे ग्रंथों में, तो जब हम वैष्णवों के साथ, जब हम वैष्णवों के संग में रह रहे हैं, तो कितना सदाचार, वैष्णव सदाचार का पालन हमें कितनी कठोरता से करना चाहिए, इसके विषय में कुछ संदेह नहीं होना चाहिए। हाउ मच मोर वी शुड बी केयरफुल अबाउट वैष्णव एटिकेट डीलिंग विथ वैष्णवस व्हेन सच डीमंस एंड सच अदर एसोसिएट्स वर following these Vaishnava etiquettes, and forget about Vaishnava etiquette, just cultural etiquette so strictly. जैसे नारद मुनि सातवें स्कंद में वर्णन करते हैं कि इस भौतिक संसार में जो तीन ताप हैं, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक, इस भौतिक संसार में इन तीन तापों में सबसे ज्यादा ताप देने वाला कौन सा ताप है? अधिभौतिक। तो अधिभौतिक ताप क्या है? दूसरों द्वारा दिया गया ताप, और विशेष रूप से कलयुग में हम देखते हैं संबंधों में, रिश्ते नातों में लोग सबसे ज्यादा परेशान या त्रस्त रहते हैं। क्यों? ये अधिभौतिक ताप की वजह से। इसलिए कलयुग की प्रधानता क्या है? कलह। कलह ज्यादातर आपस में ही होता है, जैसे यहां पर यदुवंशियों में जो कलह हुआ, आपस में ही कलह करवाया गया। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जब हम हमारे गुरु भाइयों के साथ या गुरु बहनों के साथ रहते हैं, तो वहां पर कलयुग ज्यादा अपने कार्य में वो कुशलता दिखाता है उनमें कलह उत्पन्न करने के लिए। तो नारद मुनि सातवें स्कंद में कहते हैं कि यदि इस अधिभौतिक ताप से किसी को बचना है तो उसे दो सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक है वैष्णव सदाचार और निर्मत सरता, प्रॉपर बिहेवियर एंड नॉन एनवियसनेस। चौथे स्कंद में नारद मुनि वो ध्रुव महाराज को उपदेश देते हुए ध्रुव महाराज को एक सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन न तापैर अभिभूयते। न तापैर, फिर से वो बोल रहे हैं ताप, यहां पर तो कह रहे हैं तीनों ताप, एक नहीं तीनों ताप से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। न तापैर अभिभूयते, वो किसी भी इस भौतिक संसार के ताप से प्रभावित नहीं होगा। कब? जब वो इन तीन सिद्धांतों का पालन करेगा। तो हम लोग सब इस प्रयास में भी है ना कि तीन ताप हमें तपाए नहीं। तो नारद मुनि कहते हैं कि यदि हमें इन तीन तापों से मुक्ति चाहिए तो तीन सिद्धांतों का पालन करना। सर्वप्रथम वो कहते हैं गुण अधिकान मुदम लिप्सेत। वो व्यक्ति या वो वैष्णव जिसमें मुझसे ज्यादा गुण हो, और ऐसे बहुत से वैष्णव हैं जिनमें मुझसे ज्यादा गुण है, तो वो वैष्णव जिनमें मुझसे ज्यादा गुण है उस वैष्णव के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुदम लिप्सेत, सर्वप्रथम मुझे बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि हां ये वैष्णव में मुझसे ज्यादा गुण है। द्वेष तो बिल्कुल नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका आदर सत्कार। गुण अधिकान मुदम लिप्सेत, उसका आदर सत्कार होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं अनुक्रोशम गुण अधमत, कि वो जिसके अंदर मुझसे कम गुण है, गुणों में अधम हो, वो मुझसे कम गुण हो, तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? अनुक्रोशम कृपा, कृपा का व्यवहार होना चाहिए, अनुग्रह का व्यवहार होना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत नारद मुनि ध्रुव महाराज को दे रहे हैं मैत्रीम समानात अन्विच्छेद, और जो समान रूप से है गुणों में उसके साथ मुझे मैत्री स्थापित करनी चाहिए। तो जब इन तीन सिद्धांतों का पालन कोई करता है तो नारद मुनि कहते तो तीनों तापों के परे चला जाता है। नहीं तो एक भी सिद्धांत का पालन यदि नहीं हो रहा तो उसे इस भौतिक संसार के ताप तपाएंगे। यहां पर तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये संपूर्ण घटनाएं समस्त संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दे रही हैं कि ब्राह्मण अथवा भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करने का क्या नतीजा होता। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर बिहेवियर विथ वैष्णवास। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में एक बहुत ही सुंदर एक और दृष्टांत है वैष्णव अपराध के संबंध में। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में पुरंजन की कथा है, राजा पुरंजन। तो राजा पुरंजन जिनके विषय में नारद मुनि कहते हैं कि पूर्ण प्रकार से व्यसनी ये राजा, स्त्री लंपट और केवल भौतिकतावादी चेतना में ये पुरंजन घिरा हुआ। तो पुरंजन की कथा में यह सुनाया गया है कि पुरंजन एक दिन जाता है शिकार के लिए और मासूम प्राणियों की हत्या करता है, ये सब कुछ कुकर्म कर वो जब थक हार कर वापस अपने नगर में पहुंचता है तो उसे तुरंत पुरंजनी जो उसकी पत्नी है पुरंजनी के साथ संभोग करने की इच्छा होती है। काम वासना से पीड़ित अब ये एक और गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो जैसे ये प्रवेश करता है अंतपुर में, पुरंजनी जहां पर है तो वहां पर पुरंजनी को देखता है कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ, मुंह लटका हुआ। तो पुरंजनी को पूछता है कि बताओ ये तुम्हारा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है, किसने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया या कोई कटु शब्द कहे, मैं खत्म कर दूंगा एक व्यक्ति को छोड़ के। पुरंजन कहता है जिस किसी ने भी तुम्हें कोई कटु शब्द किए या कोई अपराध तुम्हारे प्रति किया हो, मैं उसे खत्म अभी कर दूंगा केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, और वो कौन व्यक्ति है? मुरारी का भक्त। यदि कोई मुरारी का भक्त है तो मैं नहीं छूंगा। किसी वैष्णव को मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके अलावा अगर कोई और है तो बताओ, अभी खत्म कर दूंगा। तो वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज द ग्लोरीज ऑफ वैष्णव एटिकेट एंड द डेंजर ऑफ वैष्णव अपराध, की पुरंजन जैसा कुकर्मी भी वैष्णव अपराध से डरता है कि मैं और कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं। वैष्णव अपराध से पुरंजन जैसा स्त्री लंपट भी और व्यसनी राजा भी डरता था। तो सोचिए इतना जो कुछ कहा गया है। इसलिए एक जो पाप होता है, पाप और वैष्णव अपराध में अंतर क्या है? जैसे अजामिल वो पापी था, उसने वैष्णव अपराध नहीं किया था कभी, इसलिए उसके अंत समय विष्णुदूत आकर उसे यमदूत से बचा लिए। तो पाप की तुलना की गई है धूलि लेप। जैसे रेती में कोई यदि एक रेखा निकालता है अपनी उंगली से, या धूल में यदि कोई रेखा निकालता है तो वो रेखा उसे मिटाना बहुत आसान है। एक लहर आ जाती है और जो भी रेखाएं किसी ने निकाली हैं धूली पर या हवा चलती है तो सब कुछ मिट जाता है। तो पाप की तुलना इस धूली लेप से की गई है और वैष्णव अपराध की तुलना वज्र लेप, कि जब किसी पत्थर के ऊपर वज्र प्रहार करता है, बिजली, जब बिजली का प्रहार किसी पत्थर पर होता है और पत्थर पर जो लकीर वो बिजली निकालती है, वो लकीर किसी लहर से या हवा से नहीं मिटने वाली। तो वैष्णव अपराध की तुलना की गई है वज्र लेप से, और पाप की तुलना, सोचिए पाप, जितने भी बड़े किसी ने पाप किए हों वो सारे पाप भगवान ने कह दिया कि अहम तो अहम सर्व पापे भ्यो, परंतु दुर्वास मुनि जिन्होंने वैष्णव का अपराध किया, चैतन्य चरितामृत में कितने ऐसे वर्णन हैं, गोपाल चपल, इन्होंने जो वैष्णव का अपराध किया, साक्षात भगवान ने कह दिया कि नहीं, मेरे पास इसका कोई निवारण नहीं है, और यदि तुम्हारा निवारण जिसके प्रति तुमने अपराध किया है वो क्षमा नहीं करता तो मेरा सुदर्शन तो तुम्हें खत्म करने ही वाला है। तो हमें भगवान का सुदर्शन भगवान के हाथों में देखना है या हमारे पीछे पीछे वो भागे उस दशा में देखना है, वो हम पर निर्भर है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। इसलिए इस अध्याय से और इस अध्याय के इस अंतिम प्रसंग के अंतिम श्लोक से यही सीखते हैं कि यदि यदुवंशी, जिनको इन ब्राह्मणों ने शाप दिया, उनके प्रति यदुवंशी ऐसे सुसंस्कृत व्यवहार कर रहे हैं, और जितने उदाहरण हमने आज सुने कि यदि दुर्योधन जैसा राक्षस भी संस्कृति का पालन कर सकता है, यदि पुरंजन जैसा व्यसनी व्यक्ति भी वैष्णव अपराध से डरता है, तो हम वैष्णवों को तो कितना सावधान होना चाहिए। यही इस श्लोक का आज हम हमारे जीवन में उतारने की ये शिक्षा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? माइक नहीं चल रहा, एक मिनट माइक पे पूछिए।
हाँ, जो तीन गुण, तीन मुद्दे बताए प्रभु जी आपने कि जिनमें ज्यादा गुण है उनका आदर सत्कार करना चाहिए या कम गुण है उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए।
मैं नहीं बोल रहा, नारद मुनि बोल रहे हैं।
हाँ, नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ये भक्तों के संघ में कैसे इसको,
भक्तों के संदर्भ में कहा गया है?
तो फिर ये कैसे कि प्रभु जी अगर कोई कम कैसे समझे, उनके ऊपर कृपा कैसे करे, फिर हम कैसे जाने कि ये जो है हमारे से कम गुण वाला है और उसके ऊपर कृपा कैसे करे। तो ऐसे मन में आए
कृपा
तो
हमारी नहीं, ये नहीं कि मैं दे रहा हूं, ये देखो ये मेरी हथेली। कृपा का अर्थ है कि जो पूर्वज आचार्य हैं या जो गुण अधिकान हमसे अधिक गुण वाले हैं उनकी कृपा। हम जस्ट वी आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। पोस्टमैन जो है वो कृपा नहीं करता चिट्ठी देके। कृपा किसने की? जिसने चिट्ठी लिखी है। मनी ऑर्डर जिसने दिया है उसने कृपा की। पोस्टमैन तो खाली मनी ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है। तो हम उनकी कृपा, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति कहते हैं ना, कि कृष्ण की कृपा जो है वो हम बांट रहे हैं। अब इसलिए ही तो जो उत्तम अधिकारी होता है वो कभी प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तम अधिकारी वो सबको भगवान का शुद्ध भक्त पोटेंशियली मानता है, उसको दिखता ही नहीं कि कोई पापी है। तो हम यदि प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, संस्था के ऐसे प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो श्रील प्रभुपाद जैसे मध्यम अधिकारी का उन्होंने भूमिका निभाई। तो मध्यम अधिकारी की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, अपनी प्रणति, प्रभुपाद की प्रणति किसने कही? खुद ने, प्रभुपाद ने, ये मेरी प्रणति बोलो। कोई वैष्णव बोलेगा ऐसे? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ये देख रहे थे कि इनको जब तक मुझे जो कृपा मिली है मेरे द्वारा, उन आचार्यों की कृपा यदि इन्हें नहीं मिलेगी तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। तो इसमें धारणा यह नहीं है कि मैं नियुक्त किया गया हूं इनके उद्धार के लिए, मेरे अलावा कोई इनका चारा नहीं है, तब फिर हम बेचारा हो गए। वो बेचारा नहीं, हम यदि ये सोचे कि हमारे अलावा इसका कोई चारा नहीं है, वो कृपा हमारी कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा, वो हम बांट रहे हैं। इसलिए जब कोई भागवत क्लास दे रहा है तो वो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, उद्धव, मैत्रेय, ये सब इन्होंने जो सुनाया है हम उसको बस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इससे चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत की चर्चा हो रही है। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ श्लोक निर्माण कर या जो भी भागवत की कथा दे रहा है कि अपनी तरफ से वो कुछ बोलना शुरू करता है, नहीं, भगवान की कृपा बांटते हैं। तो उसका अर्थ
हरे कृष्ण प्रभु जी। हम देखते हैं कि इसमें श्रीमद् भागवतम का इतना ऊंचा कल्चर यहाँ पर दिया गया है कि जैसे पुरंजन जैसा व्यक्ति भी अपराध से डरता है, ऐसा है। जब क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे वैष्णव के साथ में रहते हैं तो इतना वैष्णव अपराध का डर नहीं रहता, या कभी कुछ गलती से हो ही जाता है, तो कैसे हम हमेशा ऐसे मन में रखें कि
देखो वैष्णव अपराध गलती से नहीं हो सकता, गलती अलग है, वैष्णव अपराध अलग है। गलती का अर्थ है मिस्टेक, वैष्णव अपराध मीन्स ऑफेंस। ऑफेंस इज समथिंग विच इज डन कॉन्शियसली, यूजिंग योर कॉन्शियंस। गलती जैसे कि मान लो कोई बोलते बोलते उसके जीभ से कुछ निकल गया, परंतु उसने मन से सोच के वो नहीं कहा था कुछ। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलती करते रहे। फिर वैष्णव अपराध में और गलती में अंतर ये है कि जब हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर किसी दूसरे वैष्णव की निंदा करते हैं, वो वास्तविक रूप में वैष्णव अपराध है। जैसे कि गोपाल चपल, वो ईर्ष्या कर रहा था श्रीवास पंडित से, लेकिन फिर भी हमें इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि गलती से भी जो आपने कहा वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। और इसका निवारण यदि भगवान स्वयं, अभी ये प्रश्न यदि भगवान को पूछा गया था कि नहीं? भगवान को किसने पूछा? दुर्वास मुनि ने। तो यही प्रश्न स्वयं साक्षात भगवान को दुर्वास मुनि ने पूछा कि मुझसे ये वैष्णव अपराध हो गया, क्या करूं? भगवान का क्या उत्तर था? भगवान क्या हाथ ऊपर कर दिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं इसका। जिसके प्रति अपराध किया जाओ उनके पास जाओ, वो क्षमा करते हैं तो ठीक, जगाए मधाई। नित्यानंद प्रभु क्षमा किए मधाई को, तब उसका उद्धार हुआ। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं है, वैष्णव अपराध के बदले कोई अटोनमेंट या पश्चाताप? यदि स्वयं साक्षात भगवान बोल देते हैं दुर्वास मुनि जैसे महान योगी को कि मैं नहीं बचा सकता, तो सोचिए हमारी क्या स्थिति है।
प्रभुजी, अभी एक प्रकार का सिचुएशन ऐसा होता है भक्तों के साथ में, समझो अगर कोई भक्ति गलती करता है या कुछ बिहेवियर ठीक नहीं कर रहा है, तो एक मूड है कि भक्त उसको समझाता है कि ये गलत चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो होता है वो गुस्से से बोलता है उसको कि ये क्या कर दिया तूने, ये अच्छा नहीं है। तो फिर ये दोनों में क्या अंतर है प्रभु जी? हालांकि दोनों उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, एक जो बोल रहा है वो समझा रहा है और एक गुस्से से उसको बोल रहा है। पता नहीं फिर एक का टेम्पर थोड़ा हाई होगा, इसके लिए वो जो चीज़ उसके गलत दिखा तो गुस्से से बोल दिया, और दूसरा इतना इन्वॉल्व नहीं उस मैटर में, और फिर वो शांति से कह के निकल जाए उधर से। तो इन दोनों में हम कैसे, क्या इसमें भी वैष्णव अपराध माना जाता है या किस प्रकार से इसको समझे?
सबसे पहले प्रश्न ये है कि हमें किसने अधिकार दिया है किसी को सुधारने का? यदि हम अधिकृत हैं कि इसकी गलती सुधारने के, हम अधिकृत हैं, तब तो ठीक है। लेकिन उसका भी देश काल पात्र के अनुसार। हाँ, कई बार थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार जो गलती करता है ऊंचा सुनता है वो, तो उसे ठीक से सुनाई दे, इसलिए प्रभुपाद कई बार थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के भी बोलते थे। जैसे एक मॉर्निंग प्रोग्राम में श्रील प्रभुपाद को एक माताजी ने चरणामृत दिया, और प्रभुपाद ने जब चरणामृत लिया तो उसमें नमक डाल दिया गया था। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज दिस सॉल्ट? तो माताजी ने कहा, कृष्णाज मर्सी, जो कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। तो प्रभुपाद क्रोधित होकर ऊंची आवाज में बोले, द कृष्णाज मर्सी, इट इज योर स्टुपिडिटी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि हाँ, ये नहीं कि फिर हम अवसर ढूंढते रहें कौन गलती करता है तो मैं फिर जो गुस्सा है वो उतारूं। कई बार वो गुस्सा उतारने के लिए हम अवसर ढूंढते रहते हैं कि कौन गलती करे। तो चेतना देखनी है हमारी, वी हैव टू लुक इन टू अवर कॉन्शियसनेस कि चेतना क्या है हमारी। और ये भी बात बताई गई है कि यदि हमें किसी की गलती सुधारनी है तो जो भी आवश्यक है उसकी गलती को सुधारने के लिए वो किया जाए, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। यदि ऊंचा बोलकर आप उसकी गलती को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो या सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हो तो वो गलत हो गया। और यदि किसी ने कोई गलती की है और वो ऐसी गलती है कि उस समय उसके ऊपर थोड़ा क्रोध दिखाने से वो व्यक्ति, जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माता पिता थोड़ी आंख बड़ा करके उनको बोलना पड़ता है, तब जाकर वो ये समझते हैं कि ये गलती मैं वापस जब करूंगा तो मुझे डांट फटकार मिलती। परंतु यदि माता पिता कोई भी वो गलती करे लेकिन हंसते हुए बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, तो यदि हंसते हुए वो बोल रहे हैं उसको ऐसे, उसने 500 का नोट फाड़ दिया, तो यदि फिर माता पिता उसको या माँ जो है या पिताजी जो है वो हंसते हुए बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं फाड़ना चाहिए, तो फिर तो पूछेगा बताओ कैसे फाड़ना चाहिए। प्रभुपाद का था एक सिद्धांत, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन डू दैट, आवश्यकता है तो थोड़ा यदि क्रोध में भी उस गलती को सुधारने के लिए उस चेतना में, ये नहीं कि बस अब मैं मेरा बकाया पूरा करता हूं इसके साथ, जो भी अकाउंट सेटल करता हूं इसके साथ, वो नहीं, वो चेतना नहीं होनी चाहिए।
तो कोई वैष्णव एटिकेट्स जो है, वैष्णव सदाचार, ये वैष्णव लोगों के प्रति हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो अवैष्णव है, जो अभक्त हैं, जो तो उनके साथ में जो आचरण हमारा होना चाहिए, तो उसको यानी अलग अलग लोगों से, यानी अवैष्णव है तो उससे अलग और वैष्णव है तो उससे अलग, इस प्रकार का भाव मन में रख के व्यवहार करें या कैसे, मतलब किस प्रकार से?
देखिए, अलग का अर्थ ये नहीं कि अभी उनको हम ये समझें कि बस ये तो सब साले राक्षस हैं, इनको तो बस जैसे कोई गटर का कीड़ा होता ना वैसे व्यवहार करो, वैसे नहीं। जैसे कहा गया है कि वैष्णव ही रिस्पेक्ट्स इवन एन एंट, एक चींटी, प्रभुपाद कई बार ये कीटाणु चींटी कॉकरोच इनके लिए महाप्रसाद भिजवाते थे, इनके लिए चैंट करते थे। तो हाँ, हमारा सबके प्रति व्यवहार आदर सत्कार का होना चाहिए, लेकिन वैष्णव के प्रति विशेष, ये आप समझो। ये अलग अलग का अर्थ ये नहीं है कि बस जो अवैष्णव है उसके साथ तो एकदम दुर्व्यवहार और वैष्णव के साथ एकदम बहुत ही अच्छा। जैसे एक बार एक शुरू किए थे मंदिर में आना ये परिवार, तो ये जो उनको समझ में आया कि कैसे वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो जो पिता थे वो संडे फीस्ट के बाद अक्सर आते थे मेरे पास और एकदम ऐसे हाथ जोड़कर, प्रभु जी कृपा, एकदम थोड़ा ऐसा दिखावटी टाइप, प्रभु जी कृपा। तो एक बार वो अपने लड़के को लेकर आए। अब उनका लड़का एक दो बार ही खाली मंदिर में आया, उसको क्या पता कि कौन ब्रह्मचारी है कौन क्या है, कुछ वैष्णव एटिकेट कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो अब वो पिताजी मुझसे बात कर रहे हैं, एकदम हाथ जोड़कर, वो दंते तृण धरी, घास का तिनका मुंह में लेकर, बोले प्रभु जी कृपा। फिर अपने बच्चे को बोले अबे झुक नीचे। मैं देख रहा था कि ये कोई तरीका नहीं है, कि अब उसे भी क्या लगेगा कि इनके सामने तो हाथ ऐसे और मेरे सामने ऐसे। सर्वप्रथम हम जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो अब तक भक्ति में आया नहीं है लेकिन इच्छा भी की है, मैं उसका भी सेवक हूं। वो मल से भी नीचे जो कीड़ा है उसके, वो अपनी तुलना उससे कर रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अवैष्णव है, मैं वैष्णव हूं और ये भी वैष्णव, तो मैं एक वैष्णव इस वैष्णव के साथ व्यवहार कर रहा हूं और इस अवैष्णव के साथ अलग। यदि वो धारणा है तो हम अवैष्णव हो गए सबसे पहले। तो हमें जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद की शिष्य, वो प्रभुपाद के पास आए शिकायत लेकर, प्रभुपाद दिस डिवोटी यू नो ही स्पोक लाइक दिस टू मी, प्रभुपाद दैट डिवोटी यू नो ही डिड दिस, प्रभुपाद दिस डिवोटी दैट डिवोटी। प्रभुपाद वेट अ मिनट, देयर इज ओनली वन डिवोटी इन इस्कॉन राइट नाउ, देयर इज मी। यू आर ऑल ट्राइंग टू बी डिवोटी। हाँ, तो मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे हाउ इजिली यू आर यूजिंग दिस वर्ड डिवोटी डिवोटी डिवोटी। वैष्णव हम लोग ऐसे यूज कर देते हैं जैसे पानी। तो व्यवहार स्टैंडर्ड क्या है, सबके साथ आदर सत्कार का व्यवहार होना चाहिए और वैष्णव के साथ तो विशेष, क्योंकि भगवान ये कहें ममय वांशो जीव लोके, ये नहीं कि ममय वांशो वैष्णव लोके, कि खाली वैष्णव मेरे अंश हैं, सभी मेरे अंश हैं। तो उस दृष्टिकोण से पोटेंशियली एवरीवन इज अ वैष्णव इंक्लूडिंग अस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पीपल आर एनवियस ऑफ ईच अदर इन डे टू डे लाइफ, वेदर नोइंगली और अनोइंगली, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दे आर एनवियस। सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू बी नॉन एनवियस।
हाउ टू बी नॉन एनवियस, वी हैव टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एनवी डज। Envy criticizes someone, finds fault, derides. So the opposite is to glorify, to respect, to worship. Like I was in UK, over there was one instance of one politician. This politician was campaigning for his party. And in his, like, what do? They criticize the other party. So when he was about to begin his criticism for the other party, you know, he received a message that the opposition leader has died of the opposite party. So now he started glorifying. His entire speech was all criticism, but now, when he received the message that he has died, he started glorifying. And he said, "I have all this glorification I am doing of this opposition leader only on the condition that he has died." This is called envy. तो ईर्ष्या के विपरीत क्या है? प्रेम। ईर्ष्या के जो जो लक्षण हैं उसके विपरीत लक्षण है प्रेम के। तो ईर्ष्या से बाहर निकलने के लिए हमें उन विपरीत लक्षणों, एंटीडोट जिसको बोलते हैं, एंटीडोट ऑफ रिस्पेक्ट, ग्लोरिफिकेशन, वर्शिप, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, हूएवर दैट पर्सन इज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।